प्रहलाद घर छोड़कर सन्यासी बनकर महात्मा नहीं हुए थे, खाली दिखा के बिल्ली के बच्चे नेवे में कच्चे घरों में रह गए और चारों तरफ गलती से आग लगा दी गई और उन्होंने प्रार्थना की। तो प्रहलाद ने पूछा अब क्या है ये, बोले हमारे वश का तो नहीं है, बिल्ली ने बच्चे दिए थे। पत्नी ने सोचा मैंने कहा पति निकाले होंगे, पति ने सोचा पत्नी दोनों तो बेटे ने निकाले। जब चारों तरफ घरों को आग लगा दी तो एक दूसरे से पूछा तो बिल्ली के बच्चे तो वहीं रह गए। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तू सर्व समर्थ है, अग्नि में बल तेरा है, जल में स्वाद तेरा है, पृथ्वी में फलदायिनी शक्ति तेरी सत्ता से, आंखों में तेरी सत्ता है, अगर तू चाहे तो हमारी गलती की क्षमा करके बच्चों की रक्षा कर सकता है। तो प्रहलाद ने कहा क्या बात कर रहे हो, चारों तरफ बबुक बबुक आग की लपटें देखकर तो मैं घोड़ा भगाते हुए इधर आया कि पिताजी ने मेरे को सौंपा है कि रात को बेटा कभी तू निगरानी करने का काम संभाल, तू राजकुमार है। हालांकि 10-11 साल के थे लेकिन स्वास्थ्य बढ़िया था, बुद्धि तो बहुत बढ़िया थी, क्योंकि बाहर से तो जन्म के 10-11 साल हुए लेकिन मां के गर्भ में तो कई वर्ष पड़े रहे थे नारद जी के संकल्प से, तो बड़ा दिव्य ज्ञान था। वो छुपा हुआ ज्ञान में लग गई थोड़ी झलक। प्रहलाद ने कहा देखो ये बच्चे जिंदे हो रह जाए तो मेरे को बुलाना, मैं देखूंगा। बोले नहीं राजकुमार, आप सुबह आना, आप आओगे फिर हम खोलेंगे मेवा। प्रहलाद आए और भगवान को प्रणाम करते प्रार्थना करते वो चारों तरफ से पक्के घड़े हटते गए तो बीच के चार घड़े कच्चे रह गए और उनमें से एक घड़े में से बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए निकल गए। प्रहलाद ने देखा कि वो इतना समर्थ है और इतना सर्वव्यापी है और इतना प्रार्थना सुनने में सजग है। बस प्रहलाद घर छोड़कर सन्यासी नहीं बने थे, मान लिया, सुने हुए में आस्था कर ली कि परमेश्वर है, सर्व समर्थ है, जल में थल में तेज में वायु में सभी में उसी की सत्ता है, बस जब वो मेरा है मैं उसका हूं, फिर तो वही भगवान सर्वेश्वर परमेश्वर है। तो उसका बाप अपने को ही भगवान घोषित किया था तो उसके प्रहलाद और उसके बाप में विरोध हो गया, तो उसके बाप ने तो अग्नि में जलवाया लेकिन आग प्रहलाद को जला नहीं सके। तू अग्नि का प्रेरक प्रकाशक है, तेरी मर्जी, जल में फेंकवाया तो जल डुबावे नहीं। आखिर प्रहलाद की विजय हुई और हिरण्यकश्यपु का अंत हो गया, अहंकार का अंत हुआ और प्रेमा भक्ति सुने हुए में आस्था का विजय हो गया। तो आपने सुना तो है कि परम सत्ता है, भगवान है, उसमें पक्का विश्वास कर लो ना, आस्था कर लो ना, मैं तुमको हाथ जोड़ता हूं, भगवान ही आपके हैं, दूसरा कोई आपका नहीं है, धोखा है। बैंक बैलेंस भी आपका नहीं रहेगा, एक ऐसा दिन भी आएगा, शरीर भी आपका नहीं रहेगा, ऐसा दिन भी आएगा, मैं बिल्कुल पक्का बोलता हूं। ये फैक्ट्री और मकान और ये सनात वकील आपकी सनात या जज का पोस्ट या बापू का पोस्ट ये सब सदा नहीं रहेगा, और वो परमेश्वर और आपका संबंध कभी टूटेगा नहीं, इतना पक्का मान लो, बहुत बहुत भारी काम होगा। जो सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और सबका अपना सुहृद है, हितेशी है, मेरा परमात्मा मेरा है, मैं उसका, ये पक्का मान। बड़ी बड़ी आपदाएं मुसीबतें आएगी, आप बैठ जाओ, वो प्रार्थना करते उसमें जरा विश्रांति पाओ, कल्पनातीत उन मुसीबतों को ऐसी हवा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुसीबत तो नहीं थी, ये तो मुसीबत के रूप में अमृत के ही घड़े थे। समझने तो अपने जीवन में बहुत बार देखो, आपने तो क्या दुख देखा और क्या मुसीबतें देखी, हम जो मुसीबतों से खेले हैं देखी, हमारे और मौत के बीच में रत्ती भर की दूरी, एक दो पांच इंच की दूरी, ऐसी सी जगहों पे गए, ऐसी सी जगहों पे रहे हूं। थे तो पास में, लेकिन गुरु जी का कृपा प्रसाद नहीं मिला था तो खोजते थे कि कहां जाए, कैसा करे तो तुम मिलेगा, और वो भी मजा ले रहा था कि खोज बैठे खोज। जब तरफ पड़ी तो सीधा पहुंचा दिया प्रेरणा करके, मैंने कौन बोल रहा है कि जिसका तुम अनुष्ठान करते हो, जिसको तुम चाहते हो, मैं वही बोल रहा हूं, जाओ यहां पर। जी है अभी वहां गणेशपुरी में एकांत में, वहीं चलो, वहीं जाओ, रोज रोज होता था वहीं चलो, मैं सभी रूपों में वहीं मिल जाऊंगा। तो बस ईमानदारी से उसको चाहो तो वो प्रेरणा भी पूरी कृपा करके देते हैं, आप केवल उनको चाहो ईमानदारी से। हम आलसी नहीं बन जाएंगे कृपा का अवलंबन लेकर, हम प्रयत्न तो करेंगे लेकिन हमारा प्रयत्न तो ठिंगू प्रयत्न है, ठिंगू। जैसे ठिंगू अंगूर के लिए जंप मारते मारते थक जाता और कोई लंबू जी को दया पड़ जाए, आ जानू बाहू अंगूर का चुग्गा उतार के दे दे और उसकी प्यास मिटा दे, ऐसे महाराज हम तो ठिंगू जी हैं, जी कूदेंगे तुझे पाने को और तुझे करहमत हो जाएगी तो तू अपना आपा ही दे देगा। लंबू जी तो अंगूर देगा और तू मिट जाएगा, लेकिन तू तो अपना आपा देने वाला महाराज। मेरे गोविंदा, मेरे गोपाला, मेरे दीन दयाला, दीन बंधु, मेरे अल्लाह खुदा रहीम रहमान करीम, माय गॉड माय, ये जो भी बोलते हो बोलते बोलते उसमें खो जाओ। प्रीति पूर्वक बार बार पुकारते पुकारते वो विवेक जगाएगा। मैं क्या होता हूं बोलने वाला, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, ये सब मेरी बकवास है। क्या करेगा क्या करेगा, मैं इतना भविष्यवेत्ता नहीं हूं बाबा, मेरी ताकत नहीं। ये तो अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने भाव को जरा थोड़ा बहुत अच्छा बना रहे, बाकी वो तो वही है महाराज। महाराज आओ तो मत करो वर्णन, बयान मत करो, सारे बयान उसी से होते और बयानों के पीछे वो टकुर टकुर जुगत देखता था। भगवत भाव, भगवत चिंतन, सत्कर्म, सेवा आदि से थोड़ी स्वच्छ हो दिए है तो बुद्धि में उसकी करुणा कृपा का योग आते, बुद्धि योग बनता। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ये नमाम उपयान। भगवत प्रसाद जा बुद्धि बनती, भगवत प्रसाद जा बुद्धि में भगवताकार वृत्ति, फिर जिस भगवान में भाव, शालिग्राम, कृष्ण, अल्लाह, ये वो भगवत प्रसाद जा बुद्धि में से आराम मय सब जग जाने, भगवान और भगवान की आलादनी शक्ति। फिर कोई क्रोधी दिखेगा तो बोले भगवान ने नरसिंह का रूप दिखाया है, कोई चोर दिखेगा बोले भगवान ही मक्खन चोर लीला कर रहे इसमें, ये ऐसा इस प्रकार की फिर मति गति नहीं होगी, भक्त सब में भगवत भाव कर देगा। सांप को देखेगा हाँ के शिव जी के गहने हैं, शिव स्वरूप। इस प्रकार भगवत भाव से उसके कई अंदर से प्रेम रस के कारण कई विघ्न, कई शत्रु, कई विरोधी ऐसी दूर हो जाए। उसे एक भगवत भाव का रस मिलता रहेगा जिससे पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता जो भोगों में आ रही थी, रस लेते ना निरस जीवन, बाहर रस खोजता है तो बाहर के रस से तो पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता आती है। जैसे भोजन नहीं तो भोजन खाएंगे तो कोई बनाएगा, वस्तुओं की पराधीनता, पैसे की पराधीनता के बिना भोजन नहीं बनेगा। और भोजन पहले क्रास में जो मजा आता है आखिरी में वो मजा नहीं रहेगा, खा खा के वो शक्तिहीनता हो गई और बाद में सो आराम करो। ऐसे ही पति पत्नी का एक दूसरे की पराधीनता, मकान की, जगह की, काम विकार भोगने के लिए वस्तु की पराधीनता, शरीरों की पराधीनता, फिर भोग भोगेंगे तो शक्तिहीनता और अंत में जड़ता आएगी। रस तो लेने गए थे लेकिन पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता के बिना ऐसा कोई भोग ही नहीं है। जो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धि के सीमित ज्ञान से ही जगत में जिएगा वो इस मुसीबत से बच नहीं सकता, चाहे चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता, ये तीन मुसीबत से बच नहीं सकता, चाहे उसका कोई भी रक्षक हो। जो बाहर रस लेना चाहता है उसको ये तीन मुसीबतें बिल्कुल तोड़ेगी, पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता। तो जितना जितना बाहर से सुख तेजी से लेगा उतना उतना शक्तिहीन हो जाएगा और कम ताकत, गुस्सा ज्यादा होता है ऐसे लोग। ऐसे लोग कहते जरा जरा बात नहीं, शक्तिहीन, सोच विचार की क्षमता नहीं, तो मैं तो मुंह तो मरीज हूं। लाडू खाए हो, छप्पन भोग की वानगी में पराधीनता, शक्तिहीनता गई, इसलिए बुद्धि में वो बल ही नहीं रहा कि ये तो सब परिस्थितियां संसार स्वप्न तुल्य है और उनको सच्चा मान के हूं तो मरी जाऊं, तो आत्महत्या करूं, तो आम खाई जाऊं, तो मां दहली वना के थे बफुल का प्या मिलना, चले जाऊं दो रोटी तो कहीं भी मिलेगी, इधर रहकर क्या करना। अरे जो जहां है वहां अगर सूझबूझ बढ़ा कर सुखी नहीं है तो कहीं भी जाएगा दुख उसके साथ रहेगा। एक बेवकूफ था वो गांव के बाहर जो पानी पीने के लिए लोग भरते हैं मीठे पानी का कुआं, वहां बेवकूफ खड़ा होकर पेशाब करने की तैयारी कर रहा था पनघट पे, तो माया बिचारी शर्म के मारे थोड़े हट गए। बुढ़िया ने पूछा, कह रहे भाई तेरा नाम क्या है, इधर कैसे आ गया है। बोले मेरा नाम बेवकूफ है। बोले इधर कैसे आया। बोले मेरी औरत खो गई है, उसको खोजने आया हूं। तो बोले तेरी औरत का नाम क्या है। बोले भजे थी। बुढ़िया पेट पकड़ के हंसी, बोले उसको खोजने क्यों आता, तेरे साथ ही तो रहती है, तो जहां जाएगा बेवकूफ, खजेती तो तेरे साथ ही है। तो जो भगवत आश्रय नहीं है तो आत्महत्या का आश्रय लेगा अथवा भाग जाएगा, इस जगह का आश्रय, उस जगह का आश्रय, उस जगह का आश्रय। अरे विवेक का आश्रय, भगवत आश्रय लो ताकि भगवान विवेक जगा दे। कि कैसी भी दुखद परिस्थिति में दुख आपको छू नहीं सकता बेटे, कैसी भी सुखद परिस्थिति वो सदा टिकने वाली नहीं, दुखद परिस्थिति टिकने वाली नहीं और आपका पिया और आप मिटने वाले नहीं। ऐसा बुद्धि योग भगवान से मांग लो ना, कब तक भागते फिरोगे, लड़ते फिरोगे। कोई दुख परिस्थिति आई और डंडा लेकर सामने आ गए तो चिंतन करते करते उसी में तबाह हो रहे, आउ छे हम ना थो जो इनाम था है ना, छोकरा नु शू थे, छोड़ी नु शू थे। अरे मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। शरीर की चिंता, बेटे बेटियों की चिंता, पालने की चिंता, ढींगने की चिंता, व्यर्थ में इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धि के सीमित ज्ञान में जो उलझे हैं, व्यर्थ के चिंता और चिंतन करके अपना गला घोट रहे बिचारे, कितना कितना करते फिर भी दुख नहीं मिटता। अगर किसी का इंद्रियगत और बुद्धिगत ज्ञान से दुख मिट गया है तो मैं उसका चेला बन जाता हूं, मेरे को साबित करके दिखाए कि मैं प्रोफेसर होने से, मैं वकील होने से, मैं न्यायाधीश होने से, मैं सेठ होने से, मैं राजा होने से मेरे सब दुख मिट गए, मेरे को साबित करके बता दे, मैं उसका चरण धोकर सिरोधार्य करूंगा। नहीं मिटेगा, दुख मिटने की तीसरी जगह है इंद्रियगत ज्ञान को, बुद्धिगत ज्ञान को। जिस ज्ञान से सत्ता स्फूर्ति मिलती और बुद्धि बदल जाती है, इंद्रिया बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता वह स्व के ज्ञान में अगर टिक गया है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली है और उसको सुखी होने के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और सुख बांटता ही है परित स्वरूप महापुरुष है, फिर चाहे वो किसी भी लवास में हो, सेठ की लवास में हो, नेता की लवास में हो, किसी की लवास में हो, माई की लवास में हो, पागल की लवास में हो, आदरणीय राम कृष्ण को हृदय ने कहा कि कोई पूर्ण पुरुष महापुरुष के दर्शन, राम कृष्ण ने बात सुन ली। एक बार उन्होंने भोजन समारंभ रखा दरिद्र नारायण का, भिखमंगों को जिमाने का, तो उस भिखमंगों में एक ऐसा विचित्र भिखमंगा आ गया कि भिखमंगे उससे नफरत करने लग गए, ऐ दुरत। आखिर उनको भोजन नहीं मिला तो रामकृष्ण देख रहे थे कि इतना अपमान होने के बाद भी वो आदमी चुकाते खड़ा, वो सब भिखमंगे खाते और जहां पत्तले फेंकते, वो पुरुष वहां गया तो पत्तलों पर तो कुत्ता भी आ गया, तो कुत्ते के गले में एक हाथ और एक हाथ जूठी पत्तलों से खुराक उठा उठा कर खाने लग गए। रामकृष्ण ऊंची स्थिति के धनी थे, वो पहचान गए कि महापुरुष है, हृदय को बुलाया कि जो ऊपर मंस छुपे हुए महापुरुष में वो है, जाके चरण पकड़, जाकर चरण पकड़ा और वंदना की, महाराज कैसे माने कि ब्रह्म ज्ञान हो गया अथवा महापुरुषत्व अपना सिद्ध हो गया। तो उस महापुरुष ने कहा कि गंगा का जल और नाली का जल जब एक लगे तो समझ लेना कि तत्व ज्ञान हुआ। भगवत प्रसाद या बुद्धि में तो शुद्धि का ध्यान रखें, तत्व प्रसाद या बुद्धि और लोक कल्याण कर रहे तो शुद्धि का ज्ञान रहेगा, लेकिन तत्व प्रसाद या में शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं रहता। तत्व ज्ञान के आगे अशुभ और शुभ दो नहीं रहता, पुण्य और पाप भी नहीं रहता, सुख और दुख का अस्तित्व नहीं रहता, जीवन और मृत्यु की भी सत्यता नहीं रहती, बस एक ही सत्य जो कहते हो उसका बयान नहीं होता। तो बापू जी आपको अनुभव हुआ कुछ तो बोलो, हम बोलेंगे तो थोड़ा उससे दूर आकर बोलेंगे। उसके इर्द गिर्द का बोलेंगे, पूर्ण हम नहीं बोल सकते। गुरु जी की कृपा होगी और पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान तो कैसा हुआ। ऐसा हो अगर पूरा बोलने जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। गहरी नींद में कैसा होता है जरा बोलना, गहरी नींद में आकर, अरे बहुत शांति है तो आपको गहरी नींद नहीं है। नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे बड़ी नींद है। जब नहीं मानेंगे वो खजाना पाने के लिए आपकी बुद्धि है, मनुष्य शरीर है, इसलिए इतना सब करने के बाद भी वहां संतोष नहीं हुआ तभी तो सत्संग खोजते हैं ना। तो खोज है, पुण्याई है ना, तो मनुष्य को ही ईश्वर प्राप्ति की आवश्यकता है, ऐसी योग्यता है। पशु तो इंद्रियगत ज्ञान में मरा मरा फिर, मनुष्य बुद्धिगत ज्ञान में कई पशु जैसा जीवन बिता देते, लेकिन बुद्धिगत ज्ञान में जब भगवान की कृपा का आश्रय लेता है, माने हुए में आस्था करता है, तो भगवान बुद्धि में जरा योग दे देते, फिर चलता है इधर को, तो फिर भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनती है और अच्छा लगता है। और जैसे कमाई करते हैं तो फिर रोज 500 रुपए का धंधा होता है, आज सुबह ही 500 का हो गया तो क्या दुकान बंद करके चला जाएगा क्या? 1000 का हो गया, और शाम होते 3000 का हो गया। एवरेज तो महीने की 15000 की थी छोटे से गले, एक दिन में 3000 का हो गया। तो रोज 8 बजे बंद करता था तो आज 7 बजे करेगा? नहीं, 8:30 बजे आएगा। और ऐसे भगवत प्रसाद जब बुद्धि होती और भगवत तत्व को पाने के लिए कुछ संकल्प से दो गए, रिद्धि सिद्धि आ गई, मान लिया कि ऐसा आ गया ऐसा आ गया, उसमें रुक गया तो भगवान का भक्त पक्का नहीं है, वो वाहवाही का भक्त है। भगवान का भक्त रिद्धि सिद्धि में नहीं रुकता, और ये भगवान की कृपा थी, नहीं तो मेरे जीवन में तो कैसे कैसे चमत्कार हुए। ओहो, बड़ा आनंद से रह सकते, बड़े मजे से खाए पिया, बड़ा ठाट मौत से, लेकिन उसने कृपा करके वहां रुकने नहीं दिया, तत्व का प्रसाद देने वाले गुरु तक पहुंचा दिया। हम तड़पते भी थे, रोते भी थे, अनुष्ठान करते तो इतनी माला करते करते रात को देर हो जाती, 11-12 बज जाते, सुबह जल्दी उठते तो ऐसी नींद आती, शराबी भी क्या नींद ले, ऐसे पड़ जाते कि फिर जंगल के वो छछुंदर हमारे पैरों की चमड़ी खा जाते, पता नहीं चलता ऐसे ही होता। सुबह चलते बालू में तो पीड़ा होती, फिर वो संत पूछते क्या हुआ, मुझे पता नहीं ऐसा हो गया है, अरे बोले छछुंदर खा गए पैर तुम्हारे, वो फूक मार मार के चूहे जैसे होते ना, वो छछुंदर वो चलो जो खाना बनाने का टाइम भी ज्यादा नहीं निकालते थे, जैसे दलिया बलिया उबाल लिया, सब्जी बब्जी कौन लेने जाए, कहां से पैसे मांगने जाए। एक बार तो गिलोड़ा 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 तो देखा हुआ, और जंगली गिलोड़ा तोड़ के वो खाया तो जहरी था, तो 2-3 दिन तक तो भाव पे, लेकिन कोई पीड़ा दुख नहीं हुआ, चलो इससे भी सफाई हो गई, शुद्धिकरण हो गया होगा जो भी हुआ। मस्तड़प उसको पाने की, वो सारे सद्गुण दे देता है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, तो सारे सद्गुण उसी के, और कामना असत है तो सारे दुर्गुण कामना से पैदा होते। जगत से सुख लेने के वासना से आप कितने भी सज्जन बन जाओ, फिर भी दुर्गुण आ जाएंगे, और भगवत सुख पाने का पक्का इरादा हो जाए भगवान को पाने का, तो आप कैसे भी वो सद्गुण आने लगे, क्योंकि सत्य तो भगवान है। और फिर गलती होती है, सद्गुण तो है सत्य स्वरूप ईश्वर के, लेकिन मेरे को भी हो गया था कि अपने में इतने सद्गुण है, लोग आते सत्संग सुना देते, इतना फल लाते, इतनी चीज लाते, अपन नहीं लेते, अपने घर का ही खाते अभी तक, फिर कान पकड़ा और मारा तमाचा अपने को, कैसा मारा वो अभी नहीं बताऊंगा आपको, कुमार से वो सारी चीजें बांट दिया, फिर भिक्षा मांगने में तो बड़ा लज्जा आती, कैसे करेंगे, के देख ले अब जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, भूख लगी, जाना तो पड़े। तो लगभग 2 बज गए और निशा में सिंधी कॉलोनी में गए, और माई को पता नहीं कि ये सिंधी भाषी है, और माई भी कहीं से बेचारी उधारी का आटा ले आके रोटी बना रही, वहां से धुआं निकल रहा था। आज से 40 साल पहले तो सिगड़ी और चूल्हे थे, मैंने देखा यहाँ माल गर्म होगा, तो माई का फुलका फूला था, और मैंने कहा नारायण हरि, और माई ने सिंधी में ऐसा सुना दिया कि अभी तक याद है कि मुआ इतना अट्टा कट्टा लाल टमाटे जैसा शर्म नहीं आती, कैसे पता चल गया, कहीं से ले आया, और पहले फुलके पर आकर टिक गया, तुम जीवो मुंह नारायण हरी, हल 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 मां, माई ने सुना दी अच्छी तरह से, अपने मन को कहा देख अब क्या हाल है, काले ले ले मजा ले ले। फिर आगे गया तो कोई माई है तो खीर लेकर बाहर आई, कोई अरे तो लीला साहब आपको शिष्य, वो तो कुटिया में रहते, बाहर नहीं निकलते, कोई घर का कुछ ले आए कुछ ले आए। फिर दूसरे दिन गए तो सारी कॉलोनी वाले व्यंजन बना बना के खड़े हो, कर मंडल भी बड़ा था तो माल भी ज्यादा आया। फिर रास्ते में भिखारियों को देखे, फिर अब अपने भी भिखारी तो तुम भी भिखारी भाई खाओ, अपने खाने जितना बचा लेते थे बाकी बांटने का बड़ा उदाहरण बन जाते थे कि देखो अपन बांट के खाते। ये भी अहंकार था, उस समय थोड़े लगता था, उस समय लगता था कि अपने क्या करने जाता बांट के लाए भगवान देखो। लेकिन भगवान ने अभी कृपा करते इन सारे झंझटों से उठा दे कहां पहुंचाता, कहीं नहीं पहुंचाया। हम जहीं थे वहीं बताया कि तू और मैं एक हूं, शरीर को मैं मानता था तब तू था, अब शरीर को मैं नहीं माना और मेरे को अपना पराया नहीं माना तो तू में एक था है, कोई अलग कर ही नहीं सकता। अब तो बता दिया कि तुम अलग होना चाहो तो भी नहीं हो सकते, हम अलग होना चाहे तो नहीं हो सकते। जैसे घड़े के आकाश को महाकाश ने बता दिया कि भाई तू अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता, और मैं अलग होना चाहूं तो नहीं हो सकते यार, तू खाली अपने को घड़ा मानना भूल जा बस। उसने कहा स्वीकार है महाराज, बस हो गया काम, इतना आसान भी तो है, इतना आसान भी है, इतना नजीक है कि एक बाल की दूरी नहीं, और इतना दूर है कि करोड़ माइल रोज रॉकेट भागे फिर भी रॉकेटों का अंत हो जाएगा, उसकी प्रकृति का अंत नहीं तो उसका अंत कहां मिलेगा भाई। आप रॉकेट दौड़ाते दौड़ाते जाओ, क्या पूर्व का छोर तुम ले आओगे कि ये पूर्व है, पश्चिम की तरफ रॉकेट दौड़ाओ तो ऊपर ही रॉकेट दौड़ाओ तो क्या पहुंचाओगे कि बस अब यहां से आगे कुछ नहीं। जब उसकी प्रकृति असीम है तो प्रकृति तो उसके एक हिस्से में है तो कितना होगा, तो उसकी प्रकृति असीम तो वो ससीम तो नहीं है। फिर भी महाराज तुम्हारे अंतःकरण का अधिष्ठान आधार बना है, कण कण का क्षण क्षण का अधिष्ठान आधार बना है। भागवत में श्लोक आता है, जिनको भगवत प्राप्ति हुई उन्होंने स्तुति की है भगवान की, नारायण स्तुति पुस्तक में ही आएगा आपके पास। तम अक्षरम ब्रह्म परम परमेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्माभि सूक्ष्मम विवादि दूरम अंतर्माध्यम परिपूर्णम ने जो अविनाशी सर्वशक्तिमान है अव्यक्त है इंद्रियों से अतीत है अर्थात मन और इंद्रियां जिसको नहीं जान सकते, बुद्धि भी जिसको नहीं जान सकती, लेकिन जो मन इंद्रियां और बुद्धि को जानते अत्यंत सूक्ष्म है, अणुप्रमाणों से भी सूक्ष्म है और विभू व्यापक ऐसे है कि आकाश भी उसके आगे स्थूल, अत्यंत सूक्ष्म है और जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, अत्यंत निकट है जो परमात्मा जो बुद्धि को देखते कितने निकट है, मन को देखते बुढ़ापा बचपन जवानी सबको जानते, मैं नहीं जानता हूं उसको भी जानते और जानता हूं उसको भी जानते कितने निकट है वो प्यारे प्रभु। ये बात मैं नहीं जानता हूं, वैज्ञानिक बात करूं मैं नहीं जानता, नहीं जानने को भी जान रहा है और ये जानता हूं उसको भी जो जता रहा है, इतना निकट है। जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होता है, अभी जो सुन रहे ज्ञान योग और भाव से जब चिंतन करके शांत होते तो भक्ति योग उसके द्वारा जो जाना जाता है, जो निकट से निकट है और दूर से दूर है, जिसको मन इंद्रियां बुद्धि कोई सब मिलकर नहीं जान सकते, लेकिन भक्ति के द्वारा ज्ञान योग के द्वारा उसके निमित्त कर्म कर दो कर्म योग के द्वारा जो जाना जाता है, और जिसको जानने के बाद जानने वाला हो उसी मय हो जाता है। तरंग ने समुद्र को जाना और समुद्र हो गए, जीव ने ब्रह्म को जाना और ब्रह्म हो गए। यहां आकर प्यास बुझती है, भूख मिटती है, रस लेने की लोलुपता हटती है, फिर रसदाता बन जाएगा, फिर आपके दर्शन से लोगों को रस आएगा, आपकी वाणी से लोगों का मंगल होगा, आपका अस्तित्व लोग नहीं जानते, आप अनजान हो, फिर भी आपका अस्तित्व हवाओं में वातावरण में सुख शांति देगा और श्रेष्ठ पात्र को आकर्षित कर देगा, जैसे रामकृष्ण श्रेष्ठ पात्र थे और उस भिकमंगों से ताड़ित महापुरुष के तरफ आकर्षित हो गए। जो मन इंद्रियों में ज्यादा उलझते हैं वो नहीं पहचान पाते, लेकिन जो बुद्धि में बुद्धि योग आए वो तुमको पहचान लेंगे। महापुरुष को पहचानना मजाक की बात नहीं है, उनको पहचानोगे ये है फलाने, लेकिन वो कितने ऊंचे हैं, जितने आप ऊंचे होंगे उतनी उनकी ऊंचाई दिखेगी। महापुरुष केतला महान से आपने ना जानी सके, जेतला जेतला आपने ऊंचा थता दिसु एटली एटली मिन जप ने खबर पड़से। जो अत्यंत सूक्ष्म है और अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते, जो अपने होते हुए भी पराये दिखते और परायों में भी जो अपने छुपे, उस परमात्मा का हम चिंतन कैसे करें, कैसे पाए। बाहर से अंदर सुख भरना भोग है और भोग से पराधीनता शक्तिहीनता और जड़ता, और उसका आश्रय छोड़कर भगवत आश्रय और भगवत प्रसाद या बुद्धि लिया तो स्वाधीनता शक्ति सामर्थ्य और चेतनता का विकास हो जाएगा, अपने विभू स्वभाव का प्रागट्य हो जाएगा। जैसा शिव जी ने अपने स्वभाव को जान लिया, लीला साहब बापू जी ने अपने स्वभाव को जान लिया, उनकी कृपा से यहां भी प्रसाद हो गया, ऐसे आप भी कर लो, तभी दौड़ मिटेगी, भूख मिटेगी और दुखों का अंत होगा। धन से दुखों का अंत नहीं होता, निर्धनता से भी दुखों का अंत नहीं होता, लंबी उम्र से भी दुखों का अंत नहीं होता और जल्दी मरने से भी दुखों का अंत नहीं होता। स्थूल शरीर में आम होता है तो अभिनिवेश रहता है, मरने का भय, नौकरी चला जाने का भय, किसी से रूठ जाने का भय, ऐसा हो जाएगा। जब स्थूल शरीर में मैं को रखते थे तो भय अभिनिवेश, सूक्ष्म शरीर में मैं को रखते तो द्वेष बन जाता है। मेरी बात इसने नहीं मानी, मेरा सिद्धांत ऐसा, मेरा ये है, मेरा ये, ये अपने वाले और अपने वाले नहीं, वो सब पराए बेवकूफ है, मेरी पार्टी के अच्छे दूत के दो ये ऐसे हैं, मेरे मजहब के अच्छे हैं ये ऐसे, मेरे धर्म के ऐसे हैं ये ऐसे। ये सूक्ष्म शरीर में अहम आता है तब द्वेष होता है। अगर कारण शरीर में अहम रुका तो राग होगा, बड़ी शांति है, बड़ा आनंद, बड़े अच्छे विचार आ रहे, मेरे को किसी में आ सकती नहीं है, यह भी अहंकार का एक साफ सुथरा पॉलिश नमूना है। मैं संकल्प करता था और सिद्ध हो जाता था और उस समय लगता था कि बरसात रोक थी, लगा था कि बहुत कुछ मिल गया, अब पता चला कि बेवकूफी थी। संकल्प विकल्प कम होते तो प्रकृति के नियम के अनुसार संकल्प सामर्थ्य आ जाता है। जिसके बहुत संकल्प होते हैं उनके संकल्प में दम नहीं है, और जो ध्यान करते हैं संकल्प शांत हो गए तो उनके संकल्प में दम आ जाता है। तो यही जगत में उथल पाथल, सूक्ष्म जगत में उथल पाथल हो जाता है, ये प्राकृतिक नियम है। लेकिन लगता था कि मेरे में बल है, दिशा छोड़ के चले आप, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे दिखा देंगे, लेकिन उसने संभाल लिया थोड़े तो फिसले थे, फिर उसने संभाल लिया। संभालने की भी बड़ी कृपा करते हैं बाबा। अब तो हमारे में बाबा कुछ भी नहीं, अपने में आप में कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। ये धोती आपकी दी हुई, कपड़े आपके दिए, शरीर माँ बाप का दिया हुआ, हमारा अपना क्या है? अगर है तो वही है जिसके सारे ब्रह्मांड है, वो हमारा है। ये अहंकार दुख नहीं देता, परम बल, परम सुख, परम नम्रता, परम प्रेम का खजाना देता है। जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती, परलय होता है, और जो प्राणी मात्र का सुपुत्र है वो हमारा है, हम उसी के आप। हमें डर किस बात का, आवश्यकता किस बात की? सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ये अहंकार जो है वो प्रेम में थोड़ी वक्रता वाला है, ये प्रेम का अहंकार है, उसमें थोड़ी वक्रता हो जाती। भला होया हरि बिसरो सिर से टले भला, कबीर जी ने भी करी वक्रता, गोपियों ने भी की वक्रता, ऐसे काय को देंगे मक्खन छाछ, नाचो फिर देते, नाचे वो ब्रह्म देगा कथिम राम राम को तो आता भी नहीं। हाय हाय, बहुत सरल है और बहुत कठिन, बहुत निकट, बहुत कैसा है बापूजी, जरा सा बता दो, जरा सा दिखा दो। चलो ऐसी जगह पे नहीं है कि तुमको ले जाके बता दू, ऐसा नहीं जो बाहर की आंखों से दिखे। जो भी बताया जाएगा देखा जाएगा उसी की सत्ता से। हे मनुष्य, तो पूर्णता पाने के लिए मनुष्य शरीर में आया है। मनुष्य उसे कहते हैं जो भगवान को प्यारा लगे। जो सज्जनों को प्यारा लगे, भगवान की प्यारी बनावट का नाम मनुष्य है, समझ गए? भगवान की आखिरी बनावट का नाम मनुष्य है। अपने मैं को हूं भगवान में विलय करके भगवत मैं हो जाए, इसका नाम मनुष्य है। बाप रे, फिर काहे को चुकना, क्यों रुकना, क्यों चुकना? नाक तू मजा दे, जीव तू मजा दे, काम इंद्री तू मजा दे, वाह वही तू मजा दे, काहे को गुलाम बनना? पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता में काय को अपने को खपाना बाबा। आओ 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 आओ, आंखें बंद हुई तो तेरी शांति और आनंद, और आंखें खुली तो तेरे ही सब रूप और तेरी सब लीला। अभी कंप योग हो गया, मौज हो गई। आंखें बंद हुई तो शांति और आनंद तुझी में आए, आंखें खुली तो तुझी को देख रहे। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुवा, अनेक रूप भेदो ही तो फिर विक्षेप नहीं होता, डर नहीं लगता। कि अरे भीड़ बड़ा का है, शुरू शुरू में तो बहुत डरते थे भीड़ बड़ा का। गुरु जी को चिट्ठी लिखते थे कि यहाँ तो बहुत शोर होता है, और बोले तुम्हारा क्या जाता है, कुत्ते रात भर भौंकते और दिन में भीड़ों के बच्चे और झोपड़पट्टे वाले गालियां भगते। बोले गालियां आकाश में चली गई, कुत्ते भौंकते भौंकते ओम ओम बोलते, ऐसा सोचो वहीं रहो। एक दिन दो दिन नहीं, 7 साल ऐसी विकट जगह पर रख दिया गुरु जी ने कि पता ही नहीं था। देखने वाले को लगे कि बेचारे से जुल्म हो रहा है, लेकिन इतनी कृपा हुई कि महाराज अब बेचारे रहे नहीं सहाय, कई बेचारे अब तो शमशा बन जाते। अगर उधर मनमानी करते और गुरु की बात नहीं मानते और सुविधा में भजन की जगह पे चले जाते तो सुविधा के भगतों पे भटकते रहते। गुरु जी ने कहा बेटा मन में आया वो मत करना, मेरे को नहीं दूसरे नाथ संप्रदाय की कथा है। मन में जो भी आया वो नहीं करा तो रुक गया, मन में आया कि हाल उठा के जा रहा हूं वो थोड़ा खेलने। बोले गुरु जी ने तो कहा मन में आया वो मत करना, तो रुक गया। शाम हो गई, बोले घर वाले सोचते होंगे अभी जाऊं, बोले ये भी तो मन में आया, मन में आया वो मत करना, मन में आया वो मत करना। करते करते रात हो गई, घर वाले लालटेन लेकर खोजने आए, बोले क्या बात है। ले गए, गए अपने मन की नहीं दिया तो खा लिया, लेकिन बोले चाले ने जो भी मन में आया वो ना करे। एक दिन दो दिन तीन दिन चार पांच 25 दिन हुए, बुआ भोपा आ गए कि छोरे को कुछ हो गया है। वो गोरखनाथ जा रहे थे और वो छोरा खेल रहा था। अरे बाप जी कटे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जरा रोटी आई है महाराज टुकड़ा खा लो। रोटी खिला दी संत को, लस्सी जरा पिला दी। महाराज अब धूप में घाम में कहाँ जाओगे, जरा आराम कर लो। महाराज ने कहा कि है लड़का, बोले क्या पढ़ा, बोले भाई कालो अक्षर भैंस बराबर। मैं क्या पढ़ाऊं, काला अक्षर भैंस बराबर, जो भी काला अक्षर दिखे वो भैंस है, इतने पढ़ाऊं महाराज मैं दौड़ने के। बोले दिल का तो साफ है, बोले महाराज अब कैसा भी हूं आपका हूं। महाराज ने देखा आपका है तो फिर हो जाए भाई मेरा, महाराज की कृपा दृष्टि पड़ी। तो रखना जी विद्वान पढ़े लिखे ईश्वर को इतना आसान नहीं पा सकते जितना सच्चा आदमी पा लेता, निखालस आदमी जितना ईश्वर को चुटकी से पा लेता है उतना चतुर आदमी चालाक नहीं पा सकता। तो बोले महाराज मेरा भी मुक्ति का कुछ उपदेश दे दो, मेरे भी भलाई का कुछ सुना के जाओ। बोले बेटा क्या सुना। बोले महाराज आप जो कहोगे। बोले मान लेगा। अरे महाराज क्यों नहीं मानूंगा, गलो कट जाए आपकी बात मैं मानूंगा। बोले जो मन में आया मत करियो। हल बल कर कर आके शाम को रखा कंधे पे। वो बोले महाराज ने तो कहा था मन में आया मत करियो। बस नाथ संप्रदाय के 84 सिद्ध माने जाते, उसमें एक सिद्ध पुरुष बन गया वो अनपढ़ लड़का। यूं कर दे तो वस्तु व्यक्ति परिस्थितियां हाजिर हो जाए, क्योंकि संकल्प शांत हो गए, बड़ी शक्तियां। उसका नाम हालीपा, नाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में उनका नाम आता है। भगवत तुल्य सामर्थ्य उनका, भक्त याद करे तो वो प्रकट हो जाए। बहुत दे दे डाल दे ऐसा हो तो वैसे ही हो जाए। इतना सामर्थ्य होने पर भी ये सामर्थ्य मेरा है ये अहम न रहे, क्या ऊंची स्थिति। किन्नाराम संत में भी बहुत सामर्थ्य था, लेकिन ये सामर्थ्य अंतःकरण में होता है। आप उससे भी आगे जाइए, ये सामर्थ्य आने जाने वाली चीज है, परमेश्वर रहने वाला है, उसमें टिक जाओ, सामर्थ्य के भी झंझट में न पड़ो। इंद्रियों का आकर्षण कम करोगे तो मन की चंचलता कम होगी, तो बुद्धि को विश्रांति मिलेगी, संकल्प विकल्प कम होंगे, सामर्थ्य आएगा। ये सीधा गणित है प्रकृति का। जितना जितना शांत मनाओ करो, विश्राम करेंगे परमात्मा में, उतना उतना सामर्थ्य आएगा। ये मैं कुछ किताबें पढ़कर आपको नहीं बोल रहा, महापुरुषों की वाणी सुनिए कुछ थोड़ा बहुत। मैं कोई ग्रंथ रट रटा के पढ़ पढ़ा के नहीं आता, लेकिन कोई कैसे डे सुनेगा कि लगेगा कि ये सब वहीं से आता है, प्राकृतिक नियम है, ईश्वर की व्यवस्था है। आप जो जो ईश्वर में शांत आत्मा होते जाएंगे, निसंकल्प होते जाएंगे, विश्रांति पाते जाएंगे, त्यों त्यों बुद्धि में विलक्षण लक्षण, अर्थात ये सारी दिव्यताएं हैं वातावरण में। अनजान आदिवासी ने टीवी को डब्बा समझ कर जरा यूं करा और दृश्य देखने लगा, अरे मैंने ये दिखा दिया और ये आ गया, ये आ गया। व्यवस्था थी वायरस की और तेरी टीवी में आ गया, व्यवस्था थी रेडियो के तरंगों की, तेरी सुई वहां उस स्टेशन पर रुक गई। ऐसे बुद्धि मन कब कौन से स्टेशन पर रुक जाए और वो विचार और सामर्थ्य और चमत्कार आ जाए, हो जाता है। दूरदर्शन, दूर श्रवण, अदृश्य होने का सामर्थ्य, सत्वगुण की प्रधानता में 10 शक्तियां आती है। नारायण बापू अदृश्य हो जाते, मैंने देखा उनको, ज्ञानी जैल सिंह उनकी दुआ लेकर बहुत ऊंची पद तक पहुंच गए, राष्ट्रपति के पद तक। वो मेरे मित्र हैं नारायण बाबू, हम और वे साथ नहीं रहे थे गुफा में, वो आए मेरे को बोलते गुफा में रहने दो, उन्होंने क्या नहीं, तो मेरे सामने देखने लगे। तो मैं क्या देखते क्या, आपकी गुफा और मैं रहने दो, ये कैसे हो सकता है। अरे फिर तो कई दिन हम रहे उसी गुफा में, और उनका स्वभाव प्रभु दया करने, हे भगवान हे दयालु हे प्रभु, ऐसे उनके स्वभाव से तो लेटे लेटे दया करने जरा जोर से बोल दिया, तो मैं भी खाके लेटा था, मूंग मूंग भी खाया, मैं उठ गया, वो लेटे थे, मैं खड़ा हो गया के झुक के, मैं क्या बात है, सारा दिन चिल्लाते रहते दया करो दया करो, वो कोई तुम्हारा नौकर है, उसकी मौज है, जब दया करे ना करे कुछ भी करे, दया कर दया कर दया करने। तो मेरे सामने देखने लगे लेटे लेटे, और देखने का ऐसा उनका हक्का बक्का भाव था कि मैं फिर रोक नहीं पाया मेरे विनोद को, मेरे से हंसी निकल गई, तो फिर वो भी हंस गया, अरे बोले लुच्चाई के मैंने रुबाब मारा लुच्चाई से, ऐसा थोड़ा लीला करके। बड़ा आनंद होता है सजाती विचार के संत मिलते जुलते थे, ऊंची स्थिति की बात होती। ओम आनंद
बाल बढ़ाना जरूरी है, बढ़ना बढ़ाना पड़ता है कि बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जो प्रक्रिया जरूरी है वो प्रकृति में होती रहती है, ऐसी स्व में जो जरूरी है वो स्व में हो जाए, प्रकृति में जो जरूरी है वो होता रहता है, करना नहीं पड़ता है। भूख लगाना पड़ता है, लगती रहती है, खाना पचाना पड़ता है, नहीं पचता रहता है, प्यास लगानी पड़ती बोले लगती रहती, लेकिन मनुष्य बेचारा मार कहां खाता है। जो स्व में स्वाभाविक होते रहना चाहिए उसको वो करने में लगा, और जो करने करना चाहिए उसको होने पे रख दिया। भजन होना चाहिए उसको तो करना पड़ता है, माला करनी पड़ती है, नियम करना पड़ता है, जप ध्यान करना पड़ता है और घर का काम होता रहता है। नौकरी बोले होती रहती है, काम धंधा बोले होता रहता है। पढ़ाई होती रहती है, उसको महत्व दिया, उसको अपने में बिठा दिया और अपने को शरीर में बिठा दिया। एक होता है क्षेत्र, दूसरा होता है क्षेत्रज्ञ, एक होता है खेत, दूसरा होता है खेत को जानने वाला। ठीक है, तो ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इंद्रिय ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, और इंद्रिय और बुद्धि बदलती है, अहम बदलता है, मन बदलता है। इंद्रिय ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक बहिकरण बाहर का देखना, सुनना सुंघना चुकना, दूसरा अंतःकरण अंदर का जानना, भूख को जानना, प्यास को जानना, सुख को जानना, दुख को जानना। ये अंतःकरण में चार होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन चार में भी अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है, कहीं न कहीं जाकर बैठ जाता है। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे ऐसा दिखा, ऐसा दिखता ही रहे, ध्यान में ऐसा हुआ, ऐसा रोज हो। लेकिन अहंकार भी करणों में ही आ गया। नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार करणों में तो आया, लेकिन सूक्ष्म करण इतना है कि पता ही नहीं। मैं पटेल हूं, मैं मकवाना हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, कहां कहां बैठ गया। हकीकत में अहंकार इस हाड़ मास में और जात पात में बैठकर उलझ गया और अपने को उलझाता है। अहंकार विभिन्न आत्मा करता अहमिति मनिए, हो रहा है प्रकृति में लेकिन अपने को करता मानता। तो इस अहंकार को भी कोई जानता है, मैं धनी हूं ऐसा अहंकार आया, उसको भी हम जानते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, तो अहंकार बदलता है। धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, दुख का अहंकार, सुख का अहंकार, माई होने का अहंकार, भाई होने का अहंकार, ये सब बदलता है। फिर भी जो नहीं बदलता है वो है आत्मा, परमात्मा, शुद्ध वास्तविक ज्ञान। इतना सरल, इतना नजीक है जो अहंकार की बदल को जानता है। जिसको बोलते मैं हूं कि नहीं, ये सवाल कभी नहीं पैदा होता। अमेरिका है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ये सवाल हो जाता है प्रश्न। लेकिन मैं हूं कि नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं होता। मैं तो हूं। फिर मैं अहंकार मिला देते अपने शुद्ध में। मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं फलाना हूं, मैं मंगेना हूं, मैं फलाना हूं, ये सब बदलता रहता। फिर भी जो नहीं बदलता वो शुद्ध चैतन्य क्षेत्रज्ञ है, मन को बुद्धि को चित्त को अहंकार को जानने वाला। उसमें अपने आप को लगा दो, वास्तव में लगे हुए हैं लेकिन गलती से उधर भटक रहे हैं।
अब सरल उपाय है कि मैं इन मन बुद्धि इंद्रियों को सब को जानने वाला जो खास शुद्ध बुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप है, मधुमय है, सुख स्वरूप है, प्राणी मात्र के सुहृद है, अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, उन्हीं में हूँ और वे मुझ में है। जैसे तरंग कह दे मैं सागर में हूँ, मैं पानी में हूँ, पानी मुझ में है, ऐसे मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर मुझ में है, ये मान लो पक्का। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं भगवान में हूँ, भगवान मुझ में है। तो ये निश्चय जो है जीवात्मा में ऐसी बड़ी मदद करेगा कि बहुत सारे झंझटों से आप छूट जाए। तू पटेल छू, पटेल बॉडी का नाम रखा गया, तू पटेल न थी, मरी जाए तो पटेल नु शरीर मर से, तू नहीं मरे बेटा। हूँ वाणियो छू, हूँ ब्राह्मण छू, हूँ अग्रवाल छू, हूँ मादो पड़े छू, ना शरीर मादू पड़े छे, शरीर बीमार होता है, लेकिन उसके आके मैं बीमार हूँ, बीमारी गहरी हो जाती। सीधे लेट कर अश्विनी मुद्रा, वात पीत कफ ये त्रिदोष, और वज्रासन में बैठकर अग्नि तत्व जगाने वाला रम रम मंत्र। दूसरा है कि आपका शरीर जो चलता है चंद्र और सूर्य, दाएं और बाएं श्वासोश्वास भी चलते रहते हैं, और अन्न औषध भी पुष्ट होता है चंद्र सूर्य से, तो रोग भी शीत अथवा उष्ण निमित्त से होते हैं। तो जब शीत संबंधी रोग हो तो सूर्य का मंत्र करके उष्णता बढ़ा के उसको नियंत्रित कर दो, उष्ण संबंधी रोग हो तो शीत मंत्र जप के उसको ठीक कर दो। जैसे सर्दी लग गई तो दाहिने नाक से श्वास लिया, रम रम जपा और बाहें से छोड़ दिया, ऐसा 5 बार करो, कैसी भी सर्दी हो गायब। नो टैबलेट, नो इंजेक्शन, नो मेडिसिन, कुछ भी नहीं। अगर खूब गर्मी लग गई है, आंखें जलती है, मसूड़े मुहावड़े हो गए, मासिक अधिक हो गया, ही हो गया, तो चंद्र नाड़ी बाएं से श्वास लिया, शांति शांति जप के दाएं से छोड़ दिया, 5 बार ऐसा करो, 1-2 दिन में आराम, बिल्कुल